मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 1 नवंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब ने एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खूबसूरत खबर हो सकता है कि एक सप्ताह पहले अखबार में पढ़ी हो सकता है कि आपके अखबार में छपी भी न हो, और अगर छपी हो तो आपने उस पर ध्यान न दिया हो, क्योंकि वो जो खबर थी वो बहुत छोटी थी लेकिन मुझे वो खबर बहुत बड़ी लगी। तो उसी खबर को आधार बनाकर आज मैं आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। खबर यह थी कि गुजरात के राज्य सरकार ने, यानी कि गुजरात सरकार ने एक आप यूं कह लीजिए एक अपील जारी की है, और वह अपील भी अभिभावकों के नाम, पेरेंट्स के नाम जारी की है। और ये पेरेंट्स हैं उन बच्चों के पेरेंट्स जो बच्चे अभी छोटी उम्र में है, या यूं कह लीजिए कि जो मिडिल लेवल तक के एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अपील बड़ी छोटी सी थी, बड़ी प्यारी लेकिन बहुत व्यावहारिक अपील थी। उन्होंने कहा कि अभी जबकि दीपावली की छुट्टियां हो रही हैं, देखते हैं कि बहुत जगह दीपावली की थोड़ी सी लंबी छुट्टियां भी होती हैं, कि जब छुट्टियां हो रही हैं तो आप अपने बच्चों को धूल में खेलने दें। जो अखबार में मैंने पढ़ा शब्द यही थे कि उन्हें धूल में खेलने दें। दो शब्द हैं, धूल और खेलना, बस इसी पर मैं कुछ बातें आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमें जब अपने हम लोगों को जब अपने दिन याद आते हैं, तो जब भी अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उस समय खेलने का मतलब ही धूल हुआ करता था, मतलब इंडोर गेम कुछ भी नहीं हुआ करते थे। थोड़े से होते थे आपने व्यापार खेल लिया, लूडो खेल लिया, कहीं कहीं जो थोड़े से अच्छे परिवार थे वहां कैरम बोर्ड आ चुके थे, आप वो खेल सकते थे, अदरवाइज इंडोर गेम कुछ भी नहीं होते थे। अब तो खैर यूं कह लीजिए कि आउटडोर गेम नहीं रह गए, जो गेम रह गए वो इंडोर गेम ही रह गए हैं, और कंप्यूटर ने तो कमाल ही कर दिया है, उसने तो इंडोर गेम ही क्या सब कुछ ही इंडोर कर दिया है। खैर, तो उन्होंने कहा धूल में खेलने दें, यानी कि एक तो आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप उन्हें घर से बाहर निकालें। चलिए, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आपको मोहल्लों में खेलते हुए मिल जाएंगे, हालांकि अब ऐसी संख्या बहुत कम होती जा रही है। मोहल्ले तो हैं लेकिन खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस पर भी अगर मकान बन जाता तो इतनी कमाई हो जाती, क्योंकि अब सारा जो केंद्रण हो गया है दिमाग का, या जीवन का लक्ष्य हो गया है, या उपलब्धियां जहां तक सिमट कर रह गई हैं वो शायद यही रह गया, यही कैरियर रह गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। उन्होंने स्पेशली कहा धूल में खेलने दो। एक बहुत पहले एक हम लोगों ने पढ़ी थी, जब हम लोग 5वीं 7वीं में पढ़ते होंगे, वो कविता आपको भी याद होगी। धूलि भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है, कृष्ण का। और वर्णन में क्या है कि कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं, धूलि भरे अति शोभित श्याम, कि जो बालक कृष्ण है उनका जो शरीर है वो धूल से सना हुआ है, धूलि भरे, धूल से भरा हुआ है, शोभित श्याम, और वो जो धूल है उनके शरीर को गंदा नहीं कर रही है, शोभायमान कर रही है। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी तरह से उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। अब देखिए कि बहुत जगह ये परंपरा है ना कि बच्चे के जो बाल होते हैं, पहले बाल वो उतरवाए नहीं जाते लेकिन बाल बढ़ रहे हैं, किसी वजह से जो परंपरागत तरीके से मुंडन संस्कार होना चाहिए कि हम उसी इस पवित्र स्थान पर जाकर के ही बाल बनवाएंगे, पहला बाल वहां उस देव को पहले बाल अर्पित करेंगे, किसी वजह से नहीं जा पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब बच्चे के बाल बढ़ गए हैं तो आप उसकी चोटी बना देंगे ताकि उसके बाल बिखरे नहीं, आंखों के सामने आए नहीं। तो कृष्ण अभी इसी रूप में है, यानी कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, चोटी है ना, पहले बाल उनके नहीं उतरे हैं, और वह भी सुंदर लग रही है। एक तरफ चोटी है, दूसरी तरफ धूल, धूल में भरे हुए हैं कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं। तो धूल क्या कुरूप करता है, धूल क्या सुंदरता को बेकार कर देता है, कम कर देता है, या उसे बढ़ा देता है? धूल ही भरे अति शोभित श्याम। दोस्तों, हमें सच मुझे लगता है कि जब अपने बारे में निर्णय लें तो हमें अपने भूगोल को देखना चाहिए, क्योंकि धूल में मत खेलो, बीमार पड़ जाओगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर यह विचार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कि जब आप गंदगी में रहेंगे, गंदगी में खेलेंगे तो उसका इन्फेक्शन होगा। लेकिन इसका एक दूसरा सत्य भी है, कोई भी सत्य अपने आप में संपूर्ण सत्य नहीं होता अगर उसके संदर्भ को आप हटा दें तो। संदर्भ के साथ जब हम किसी भी बात को जानेंगे तभी सत्य तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कि जो दिख रहा है वही सत्य है, जो बोल दिया गया है वही सत्य है, जो हमने पढ़ लिया है वही सत्य है। सत्य इतना आसान नहीं होता। अब आप देखें कि ये जो सत्य आया है यूरोपीय देशों से आया है, यूरोप का सत्य है, यूरोप का विज्ञान है, और यूरोप का अगर मेडिकल साइंस है तो वो भी सच है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। आप हमें यूरोप और अपने भारत के भूगोल को समझना होगा। यूरोप के बहुत से देशों में मैं गया हुआ हूं, लगभग 15-20 देश तो हो चुके होंगे, काफी लंबे लंबे समय तक रहा हुआ भी हूं। आप क्या मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं कि अगर आप एक कपड़े एक सप्ताह तक भी पहने तो उस कपड़े में कोई दुर्गंध नहीं आएगी, पसीना ही नहीं निकलता। यदि आप अपने जूते पर 15 दिन तक पॉलिश न करें तो आपका जूता फैड नहीं होगा, क्योंकि वहां धूल ही नहीं होती, क्योंकि वो शीतोष्ण कटिबंध में है। यानी कि कह दे अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो वो 40 डिग्री के ऊपर, 40 डिग्री 45 डिग्री 40 50 के आसपास है, तो वहां धूल होती ही नहीं, ज्यादातर वहां ठंड होती है, जहां ठंड होगी वहां धूल नहीं होगी, तो उनमें इम्यून पावर भी उसी तरह का डेवलप होगा। आप देखिए कि वहां के जब लोग भारत जैसे देशों में आते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा सामान्य पानी पिला दीजिए तो बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। और हमारे लोगों की मजबूती ये है कि वो कोई भी पानी पीते रहते हैं लेकिन मस्त रहते हैं। तो ये हमारे शरीर के इम्यून पावर पर डिपेंड करता है, और हमारा जो इम्यून पावर है वो हमारे भूगोल पर डिपेंड करता है कि किस वातावरण में हम रह रहे हैं, किस वातावरण में हम जी रहे हैं। वो वातावरण, वो पूरी हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हमारे शरीर की क्षमता का निर्धारण करती हैं। और हमें चाहिए भी है कि हम भूगोल के साथ अपने जीवन का तालमेल बैठा कर चले। भारत उष्ण कटिबंध में है, यहां गर्मी होती है, यहां धूल होती है, तो सीधी सी बात है कि उन धूल के साथ हम जीने के लायक हो सके प्रकृति ने इस तरह का इंतजाम किया है, क्योंकि प्रकृति इस तरह के इंतजाम सबके लिए करती है, सबके लिए करती है। क्योंकि अगर वो इंतजाम नहीं करेगी, हमें उन स्थितियों में जीने के लायक नहीं बनाएगी, तो हम जी ही नहीं सकेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अस्तित्व रहेगा ही उसका जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठा रहा है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो धूल के साथ तालमेल बैठाने का है, और अगर हम उस धूल से अपने बच्चे को इस इनिशियल स्टेज पर काट देते हैं तो ये मान करके चलिए कि उसके जीवन के प्राकृतिक अंदाज को हम नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो कभी धूल को बर्दाश्त करने लायक नहीं रह जाएगा, हम उसे कमजोर बना रहे हैं। उसे अगर वह धूल में खेलेगा तो आप भयभीत मत होइए कि उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए ऐसा हो, आपको लगे भी, लेकिन धीरे धीरे वो इसी तरीके से अपनी क्षमता विकसित करता चला जाएगा। और ये जो क्षमता होगी केवल शारीरिक क्षमता नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं मानसिक क्षमता भी होगी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है और एक जिम्मेदार अभिभावक के रूप में हमें उन्हें मजबूत ही बनाना चाहिए, तो हम देखें कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के संपर्क में आए, धूल में ही नहीं खेले, बरसात में नहाए, धूप स्नान करे, धूप में भी जाए। हाँ, जब चिलचिलाती हुई धूप हो, लू हो, तो डेफिनेटली उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और हम सब ध्यान देते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें पूरी छूट दे दें, लेकिन हमारे जो निर्णय हो वो तार्किक हो, हमारे जो निर्णय हो वो वैज्ञानिक हो, आयातित न हो, इंपोर्टेड आइडियाज न हो। उनके लिए कोई अलग बात है तो हमारे लिए कोई अलग बात है। दोनों की चूंकि भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, प्राकृतिक स्थितियां अलग हैं, तो स्वाभाविक रूप से जीवन की जो स्थितियां हैं, जीवन के जो अंदाज होंगे वे भी अलग अलग होंगे। और मुझे लगता है कि जो भारत का अंदाज है वो इसी तरह का है कि प्रकृति के साथ जियो, जो है प्रकृति में उसे स्वीकार करो, अपने अंदर लाओ और उसके अनुसार ढलो, और इस तरह से ढलकर अपने आप को इस्पाती बना लो, इस्पात की तरह मजबूत बना लो। तो मित्रों, जैसा कि आज शुक्रवार का दिन है, 2 दिनों के बाद अब आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।